हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 366। आदित्य ने सभी लोगों को घर के अंदर जाते हुए देखा। उसने अनय से कहा, ये कहाँ भाग रहे हैं? ये सारे के सारे मुझे देखकर छिप रहे हैं क्या? लेकिन बच नहीं पाएंगे मुझसे और ना ही अपने बेटे को बचा पाएंगे। ये बात बोलते हुए आदित्य बहुत गुस्से में लग रहा था। अनय जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए उसने आदित्य का उन लोगों से सामना नहीं होने दिया। खुद बीच में आकर आदित्य को शांत करते हुए बोला, आदित्य देखो, इस तरह से रिएक्ट मत करना, और जान से तो मारेगा नहीं ना उसे। फिर और वो उसके घर वाले भी वहां पर हैं, साथ ही उसकी विराज की माँ भी। ये बात सुनकर आदित्य को पिछली कुछ बातें याद आईं। वो एकदम से गुस्से में बोला, मेरा उस औरत से कोई भी लेना देना नहीं है। आदित्य एकदम से बोला, वो ये भूल गया था कि अनय को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसकी बात सुनकर अनय थोड़ा कन्फ्यूजन से बोला, किस औरत से? मैंने तो किसी भी औरत की बात नहीं की। आदित्य ने उसकी बात को टालते हुए कहा, मेरा मतलब है कि वो जितने भी लोग वहां पर हैं उन सबसे, और वो औरतें हैं ना, वो विराज की माँ बहन, और वो तुम्हारी बीवी भी तो है ना, मुझे उन सबसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस विराज से मतलब है। बस उसकी गर्दन एक बार मेरे हाथ में फिर से आ जाए तो मैं इस बार उसे छोड़ूंगा नहीं। सुनैना को क्या क्या झेलना पड़ रहा है तुम्हें पता भी है ना, और सब कुछ उस विराज की वजह से ही। विराज के बारे में ये सब बोलते हुए आदित्य बहुत गुस्से में आ गया था। अनय ने जब उसे इस तरह गुस्से में देखा तो उसे शांत करते हुए बोला, यार आदि कूल डाउन, इस तरह से प्लीज बिहेव मत करना, यहाँ काफी सारे लोग हैं, और सच कहूँ तो इन सबको इसका कोई भी आइडिया नहीं था मुझे। अनय थोड़ा परेशान होते हुए बोला। इस पर आदित्य ने कहा, तो क्या हुआ अगर वो लोग यहाँ पर हैं? आखिर उन्हें भी तो अपने बेटे की करतूतें पता चलें, और अगर उन लोगों ने इन सब में उसे सपोर्ट किया तो मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। आखिर वो लोग समझते क्या है मुझे? आदित्य गुस्से में वहां से आगे बढ़ता हुआ बोला। अनय ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आदित्य बिल्कुल भी नहीं रुका। इसके बाद आदित्य के पीछे वाली गाड़ी से दो लोग और निकलकर उसकी तरफ आए, और आदित्य के पीछे ही वो लोग भी वहां उस तरफ बढ़ गए। आदित्य को इतना रोकने और समझाने के बाद भी उन तीनों को खुद से पहले घर के अंदर जाते देख अनय बेबसी से वहां खड़ा रहा। लेकिन फिर जैसे उसे कुछ याद आया तो वो भी भागता हुआ सा आदित्य के पीछे आया और पीछे से ही उसे आवाज लगाता हुआ बोला, यार आदित्य रुको, तो कम से कम बात तो सुनो। पर अनय की ये बात सुनने के लिए आदित्य वहां पर नहीं था। वो वहां से आगे घर के अंदर आ चुका था और घर का दरवाजा बंद था, लेकिन उसमें लॉक नहीं लगा था। इसीलिए आदित्य के एक साथ रखते ही एक तेज आवाज के साथ वो दरवाजा खुल गया, और उसकी वजह से सभी की नजरें उस तरफ हो गईं। आदित्य को वहां पर देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा विराज के पापा को आया। बाकी सब लोग कहीं ना कहीं पूरी सिचुएशन जानते थे। अवंतिका तो पहले ही बार से आदित्य को पसंद करती थी, लेकिन कॉलेज में एक बार के बाद से उसने उसे नहीं देखा था। लेकिन आज उसे वहां पर देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। लेकिन उसके पापा आगे बढ़ते हुए बोले, तुम इस तरह से यहाँ घर में कहाँ से चले आ रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं है, और तुम हो कौन? तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? विराज के पापा आदित्य को नहीं पहचानते थे, क्योंकि आदित्य ने अपनी आइडेंटिटी अब तक छुपा कर रखी थी, और वो यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करने भी नहीं आया था जो उनको अपनी रियल आइडेंटिटी बताए। आदित्य ने बहुत ही सख्त नजरों से उन सब की तरफ देखकर उन्हें वार्निंग देते हुए अपनी एक उंगली दिखाकर कहा, मेरे रास्ते से हट जाइए आप लोग, मैं आप लोगों में से किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहता, मेरा आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ गुनाहगार चाहिए जिसने मेरी वाइफ को किडनैप किया और उसके ऊपर हमला किया जिससे कि उसकी जान तक पर बनाई है। और आप सबको नहीं पता क्या, पहले तो आपका बेटा गलत काम करता है, फिर आप लोग उसके गलत काम में भी उसका साथ देते हो और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे सामने खड़े हो जाते हो। आदित्य ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, खासकर विराज की माँ को उसने घूर कर देखा और बोला, बचा ही लिया आखिरकार आपने अपने बेटे को। विराज की माँ ने आंसू भरी नजरों से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आदि बेटा। आदित्य ने बहुत गुस्से से मना करते हुए कहा, तुम मुझे बेटा मत कहो, मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है तुमसे। व्हाट? कौन सा रिश्ता? किस रिश्ते की बात कर रहे हो आदि तुम? आंटी से तुम? पीछे से आते हुए अनय ने पूछा। अनय की ही तरह बाकी सारे लोग उतने ही कंफ्यूज नजर आ रहे थे। सिर्फ विराज के पापा ने उसकी माँ की तरफ इस तरह से देखा जैसे कि वो बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। तो विराज की माँ ने हल्के से हाँ में अपना सिर हिलाया, जिस पर मिस्टर सहगल की आंखें हैरानी से काफी ज्यादा बड़ी हो गईं, और वो आगे आते हुए बोले, इसका मतलब तुम वही हो आदित्य, आदित्य सिंघानिया? मिस्टर सहगल इसके आगे कुछ भी बोल पाते उससे पहले ही पीछे से विराज की आवाज आई और उसने कहा, हाँ बिल्कुल सही पहचाना है आपने डैडी, यही है आदित्य सिंघानिया, इसका हमारे साथ जो रिश्ता है। डोंट टेल मी डैड कि आपको भी इस बारे में नहीं पता था, लेकिन आपको तो पता ही होगा ना। विराज को वहां देखकर और उसकी आवाज सुनते ही सभी हैरान थे, क्योंकि वो क्या बोल रहा है इस बारे में किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और उसके अलावा मनस्वी इस बात से परेशान थी कि उसने तो विराज को अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की निगरानी में रखा था रूम में बंद करके, तो वो इस तरह से बाहर कैसे आ गया? विराज को वहाँ सामने देखकर कोई और कुछ भी बोल पाता, उससे पहले ही मनस्वी ने तेज आवाज में चिल्लाया, ये बाहर कैसे आया? कहाँ हो तुम लोग? फिर मनस्वी ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, विराज दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, या फिर मरने का शौक है तुम्हें? इस तरह से बाहर निकल कर क्यों आए, और ये सब क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? मनस्वी उसकी फिक्र करती हुई बोली, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आदित्य उसकी तरफ आया और उसने गुस्से में विराज का कॉलर पकड़ लिया और बोला, मेरा किससे क्या रिश्ता है, ये तो तुम जेल में बैठकर डिसाइड करोगे अब, लेकिन मेरा एक रिश्ता जो तुमने तोड़ने की कोशिश की है वो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने अपने ये गंदे हाथ लगाए कैसे सुनहना पर, उस पर तुमने अपनी गंदी नजर डाली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलते हुए आदित्य ने उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच चढ़ दिया। वो काफी गुस्से में था काफी टाइम से, और उसका सारा गुस्सा इस वक्त विराज पर ही उतर रहा था। और इतने दिनों से आदित्य का टॉर्चर झेलने के बाद विराज पहले ही काफी ज्यादा वीक था और बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं था। इसे ये आदित्य का एक पंच भी वो झेल नहीं पाया और वहां जमीन पर ही गिर गया। आदित्य को इतने गुस्से में देखकर किसी की भी आदित्य को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। मनस्वी थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ी, लेकिन पूरी तरह से आगे नहीं आ पाई, तो अनय ही आगे आया और उसने आदित्य का हाथ पकड़ लिया, जिससे वो एक बार फिर से विराज के चेहरे पर वार करने वाला था। आदित्य का हाथ पकड़े हुए अनय ने उसकी तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं आदि, रुक जाओ, और अगर ऐसा ही है तो अभी पुलिस को फोन करो और इस पर लीगल केस करो। अनय की ये बात सुनकर आदित्य रुक गया और थोड़ी सी सोच में पड़ गया।
पुलिस को फोन करने वाली बात सुनकर विराज के मम्मी पापा, अवंतिका और मनस्वी सभी परेशान नजर आने लगे। मनस्वी ने अपनी जगह से थोड़ा आगे आते हुए कहा, नहीं आदित्य, अब अगर तुम इतने टाइम के बाद केस करोगे तो तुमसे भी बहुत सारे सवाल होंगे, इससे तुम्हारी होटल की रेप्यूटेशन और कंपनी पर भी असर पड़ेगा, और रही बात सज़ा की तो जानते हो कि कितनी ही सज़ा मिलेगी इस पर। इसे कुछ ही दिनों में ये लोग कोशिश करके इसे किसी न किसी तरह बेल पर बाहर निकलवा ही लेंगे। इसलिए मनस्वी अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही विराज की माँ आदित्य से रिक्वेस्ट करते हुए बीच में ही बोल पड़ी, आदित्य बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, माफ़ कर दो इसे। हाँ, मुझे पता है शायद इसकी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन इसमें पूरी तरह से गलती इसकी भी तो नहीं है। ज़रूर हमसे ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, या फिर हमने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये अभी तुमसे और तुम्हारी बीवी से माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, क्यों विराज? और उसके बाद तुम कभी भी ऐसा कुछ गलत नहीं करोगे ना, जल्दी माफ़ी मांगो अपने बड़े भाई से। आदित्य ने हाथ दिखाकर विराज की माँ को वहाँ पर ही रोकते हुए कहा, कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच, और मुझे कोई इसकी माफ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करने वाला, और अगर मैं चाहूँ तो इसे जेल भिजवा सकता हूँ, और ये भी देख सकता हूँ कि इसकी बेल किसी भी कीमत पर ना हो और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, लेकिन मैं भी अब इन सबसे बस छुटकारा चाहता हूँ। इसलिए फिर उसने मनस्वी की तरफ देखा और कहा, ये आखिरी बार है जब आज मुझे ये लड़का अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा है, इसके बाद अगर ये कभी भी मुझे सुनैना के आसपास या फिर इस शहर में कहीं भी नजर आया तो फिर इसके साथ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं, तुम सब होगे। आदित्य ने वार्निंग देते हुए ये सब कुछ कहा और इतना बोलकर वहां से दरवाजे की तरफ ही बढ़ गया, और उसके साथ ही वहां दरवाजे के पास खड़े वो दो लोग भी जो उसके पीछे ही यहां तक आए थे उसके साथ वहां से बाहर निकल गए। अब तक ये बात साफ नहीं हो पाई कि आखिर आदित्य का विराज की माँ से क्या रिलेशन है, पूरी बात क्या है ये तो किसी को भी क्लियर नहीं है, और अभी शायद माहौल भी नहीं है ये सारी बातें क्लियर करने का। लेकिन वहां पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद सिर्फ अनय ने मन ही मन इस बारे में सब कुछ पता करने की ठानी, लेकिन ये सब कुछ खत्म होने के बाद, आदित्य के वहां से चले जाने के बाद, अनय ने फिर से मनस्वी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है मनस्वी, और आदित्य ने जो कहा है वो उसे निभाएगा, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को भी वो करना होगा जो वो चाहता है, और मैं इसकी जिम्मेदारी तुम पर छोड़ता हूँ। क्रमशः